अब आगे वो बात है जो कि बहुत तकलीफ दे है, जब देखिए आपको कोई इल्जाम लगा दे ना, झूठा इल्जाम, तोहमत, कितनी तकलीफ होती है। यहाँ पे वो इल्जामात, वो इतराजात जो के मुशरिकीन करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनकी बात की गई है और उनको अल्लाह ताला ने जवाब दिया। वह ईजा बदलना आयत मक्या न आयतिन, जब हम बदल देते हैं एक आयत को दूसरी आयत की जगह, क्या मतलब है? यानी कुरान पाक जब उतर रहा था ना, तो ऐसे उतरता था कि पहले एक आयत आई है, फिर दूसरी दफा कोई हुक्म उसकी जगह दूसरा आ जाता, फिर कोई और हुक्म आता, जैसे तदरीज का जिसको कहते हैं, एक तरीका एक कार है। मिसाल के तौर पे शराब है, पहले शराब को कहा गया कि ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, इसमें गो के कुछ फायदे भी हैं, फिर कहा गया आप शराब को ना पियो जिस वक्त के तुम्हें नमाज के करीब, नमाज के टाइम पे नहीं शराब पीनी, फिर उसके बाद शराब को हराम कर दिया गया, तदरीज से ग्रेजुअली ग्रेजुअली हुक्म दिया गया। इसी तरह मसलन वो लोग पूछते कि आप बताएं कि जो है कयामत कब आएगी, तो कभी एक तरह से उसका जवाब दिया गया, कभी दूसरी तरह से जवाब दिया गया। अब वो या कोई हुक्म है, एक आ गया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उस हुक्म को मनसूख कर दिया और उसकी जगह दूसरा हुक्म दे दिया गया, तो वो कहने लगे कि ये कैसे हैं, जब भी कोई इस तरह एक आयत की जगह दूसरी आयत आ जाती थी, नासिख और मनसूख का आपको बताया गया कि एक आयत ने दूसरी को मनसूख कर दी, फिर दूसरा हुक्म आ गया, उसके पीछे हिकमत होती थी कि कुरान जो है ये दीन इस्लाम कयामत तक के लिए, इसके बाद कोई और दीन अल्लाह की तरफ से नहीं आना, कोई और पैगाम नहीं आना, तो ये फाइनल है। अब इसके अंदर फाइनली जो कयामत तक के लिए हुक्म था वो रखा गया, बाकी जो लोगों की बाज दफा तरबियत के लिए, बाज दफा उनकी एक उसमें कोई और हिकमतें होती थी कि एक हुक्म दिया जाता था, फिर उसके बाद उस हुक्म को वापस लेके दूसरा हुक्म दिया जाता, ताकि लोग ग्रेजुअली उससे यूज्ड टू हो। ठीक है, अब यहूदी जो थे वो तो ये कहते थे कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी वो फाइनल थी, अब इसके बाद कोई और क्यों आ गई, और जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी कोई इस तरह के इतराजात करते थे कि ये आज इन्होंने एक बात कही है, कल दूसरा हुक्म आ गया, तो ये तो लगता है कि खुद ही अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे की गई कि जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत ले आते हैं, दूसरा हुक्म ले आते हैं एक को बदल के, वल्लाहु आलम बिमा युनज़्ज़िलु, अल्लाह ताला खूब जानता है उसको जो वो उतारता है, अल्लाह को पता है कि वो क्या उतार रहा है, अल्लाह ताला को पता है किसको कैंसिल करना है बाद में, किसको नहीं करना। देखिए नसख की भी ना, कैंसिलेशन की भी दो किस्में, एक नसख मा तिलावा है कि कभी तो अल्फाज मनसूख कर दिए जाते, तिलावत उसके जो जो अल्फाज हैं वो खत्म कर दिए जाते, और कभी हुक्म के साथ मनसूख होता, अल्फाज होते हैं मगर हुक्म मनसूख कर दिया जाता है, सिर्फ हुक्म कैंसिल कर दीजिए, अल्फाज अभी भी हैं, जैसे मैं आपको कभी कभी बताती हूँ कि ये मनसूख हो गया वह हुक्म। ठीक है, कभी एक की जगह दूसरा ले आया जाता था। तो 23 साल में कुरान पाक उतरा, पहले बाज जगह पे हर एक हुक्म नहीं, और ये दीने इस्लाम के जो बुनियादी जो बेसिक अहकामात या बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो कभी नहीं चेंज हुए। हाँ शरीयत के अंदर कहीं कहीं चेंजेस आए कि ये अब इस तरह से होगा, अब इसके अंदर ऐसे, जैसे शराब की हुरमत का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, फिर जरूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक और लोगों को उससे यूज टू करने के लिए ग्रेजुअली ग्रेजुअली चीजों को लाया गया। तो बहुत सारी हिकमतें हैं इसके पीछे, इसके अंदर हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते कि कैसे नासिख मनसूख हुआ, मगर एक की जगह जब दूसरा हुक्म आया, इतनी बात आप समझ लें। तो क्या होता था, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु आलम हम बिमा युनज़िलु, अल्लाह को पता है जो वो उतारता है, तो वो क्या कहते थे, कालू इन्नमा अंता मुफ्तरिन, वो कहते थे तू तो खुद ही घड़ के ले आता है सारा कुछ। अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया बल अक्सरहुम ला यालमून, इनमें से अक्सरियत को कोई इल्म ही नहीं है, इनको नहीं पता, इनके यानी इनको पता ही नहीं है कि क्या हिकमतें हैं, क्यों अल्लाह ताला ने इसको मनसूख किया, क्यों दूसरी हुक्म को लाया गया, ये जानते ही नहीं है। इस वजह से ये नुक्ते निकालते हैं, इस वजह से ये ऐसी बातें करते हैं, इतराजात करते हैं। और आप इमेजिन करें कि हमारे जैसे लोगों को जिनके कोई हैसियत नहीं है, उनको भी कोई कह देना, ये खुद ही घड़ घड़ के लाती रहती है बातें, खुद ही अपनी बनाती रहती है बातें, ऐसे मैं कितना दुख हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना बड़ा बोहतान, इतना बड़ा इल्ज़ाम कि खुद ही घड़ लेते हैं कुरान को, कोई अल्लाह की तरफ से नहीं आया। देखो ना, खुद ही बदल बदल के ले आते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ये कितनी बुरी बात थी वो जो वो कहते थे, और कितनी तकलीफ दे बात थी। और अल्लाह ताला जानता है जो वो नाजिल करता है, यानी अल्लाह ताला का कलाम है, उसको पता है कि उसने क्या नाजिल करना और किस वक्त नाजिल करना है। तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? कुल नज़लहू रूहुल कुदुस, कह दीजिए आप ए नबी, इनको जवाब दें कि मैं खुद नहीं घड़ के लाता, ये नाजिल किया है इसको रूहुल कुदुस ने, मैं रब्बी का तुम्हारे रब की तरफ से, बिल हक, साथ हक के, सच्चाई लेके रूहुल कुदुस उतरे हैं। रूहुल कुदुस कौन है? जिब्राइल अलैहि सलाम, पाक रूह। और इनको ही रूहुल अमीन भी कहा गया दूसरी जगह, अमानतदार रूह, अमानतदार। देखिए फरिश्ते सारे ही अमानतदार हैं, लेकिन खास तौर पे ताकीद के लिए कहा गया, बताया गया कि इस कुरान की सेंसिटिविटी इतनी है कि इसको लाने वाला भी वो फरिश्ता है जो अमानतदार फरिश्ता है, जो मुकद्दस फरिश्ता है, पाक फरिश्ता है। ये लकब है जिब्राइल अलैहि सलाम का। वैसे तो सारे ही फरिश्ते पाक हैं, मगर इनको खास तौर पे ये कहा गया। और नज़ला, नज़ला युनज़िलु तंजील का मतलब होता है ग्रेजुअली नाजिल होना। एक अनजला होता है, इन्ना अनजलना आयतन, हमने नाजिल किया। अनजल का मतलब होता है एक ही दफा नाजिल करना, नज़ला का मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा थोड़ा करके 23 ईयर्स में जिब्राइल अलैहि सलाम, ऑलमोस्ट 23 ईयर्स थे उसमें जिब्राइल अलैहि सलाम इसको लेकर उतरे तेरे रब की तरफ से हक के साथ। एक फिरका ऐसा भी दुनिया में गुजरा है जिसने कहा कि ये जिब्राइल अलैहि सलाम के ही अल्फाज हैं, अल्लाह ताला के अल्फाज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो कलाम ही नहीं करता और उसने जिब्राइल अलैहि सलाम के दिल में डाल दिए तो उनके वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है, ये अल्फाज अल्लाह के हैं। जिब्राइल अलैहि सलाम की ड्यूटी सिर्फ क्या है? इसको लेकर उतरना, और इसमें हक है, ये हक के साथ उतरे हैं, सच्चाई है। लियुसब्बितल्लदीना आमन, किस लिए ये उतरा? नंबर 1, ताकि ईमान वालों के दिलों को जमा दे, जम जाए उनके दिल, उनके दिल ईमान पे साबित कदम रहे, क्योंकि हालात ऐसे थे और हमेशा ही हालात ऐसे रहे हैं ईमान वालों के लिए कि उनके ऊपर, ईमान के ऊपर जमने के लिए ना उनको जरूरत है किसी चीज की, कि जो जिसकी वजह से वो ईमान पे उनका दिल जमा रहे। और अल्लाह ताला कुरान के साथ दिलों को जमा देता है। जब आप कुरान के ऊपर चलने वाले हों या कुरान को समझने वाले हों, तो आप देखेंगे आपका दिल मजबूत हो जाएगा ईमान पे। ईमान मैंने जैसे अभी बताया ना, ये ईमान बढ़ता कैसे है? इस कुरान के जरिए। तो ये पक्का कर देता है ईमान वालों को, उनके ईमान में आपका भी दिल मजबूत होता है ना। जब आप एक क्लास ही लेते आपका ईमान कितना बढ़ जाता है? ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की तासीर है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने नाजिल किया इस कुरान को आहिस्ता आहिस्ता हक के साथ। लेकिन जैसे जैसे हालात आते जाते थे, आज कुछ हालत है कल कुछ और है, तो उस मुताबिक कुरान उतरता था। अगर अल्लाह ताला एक ही दफा नाजिल कर देता, ना उनको याद रहता, ना उनको वो समझना भी मुश्किल हो जाता, और अमल करना सोचे कितना मुश्किल होता। आप एक रात में कहें कि सारी पे अमल कर लो, ये उनके लिए कैसे, उस सोसाइटी के लिए कितना मुश्किल काम था। ग्रेजुअली ये काम आता है, वो यूज्ड टू हुए उनसे, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको ये तंजील का बड़ी हिकमतें, तो ताकि इनके दिल मजबूत हो जाएं, जम जाएं। वह हुदन और हिदायत है इसमें। नंबर 2 क्या मकसद था इसका? हिदायत, हिदायत राह दिखाना, रहनुमाई, गाइडेंस। तो ये गाइड है। अब हमारे, अल्लाह ताला हमें माफ करे, हमारे लोग ये समझते हैं कि हमें कौन सा गाइड की जरूरत है, हमें गाइडेंस नहीं चाहिए, हमें हम अपनी गाइडेंस खुद ही ले लेते हैं, हमें बड़ा अच्छी तरह पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हमें कौन गाइड करेगा? जबकि अल्लाह ताला ने इसको गाइडेंस बना के, मैं इसलिए एक और वर्ड यूज कर रही हूँ, हिदायत नहीं बार बार कह रही, क्यों? इसलिए कि आप कुछ कुछ वर्ड से इम्यून हो जाते हैं, चाहे उनका मतलब पता ना हो, बस हिदायत हिदायत कहते रहे। गाइडेंस कहूंगी ना तो हमें अच्छी तरह पता है व्हाट इज गाइडेंस, जो गाइड करता है, जो लीड करता है, जो किसी रास्ते पे लेकर जाता है, वो उसको गाइड कहते हैं ना। आप किसी को गाइड भी बनाते हैं, ठीक है, आप कहीं नई जगह पे गए, आप वहां पे क्या आपको पता नहीं है, आप वहां पे गाइड लेते हैं, उस गाइड के को आप फॉलो करते हैं, ऐसा ही है ना। अब आप इसी को सोच लें, कुरान ये गाइड है। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये सिर्फ एक पढ़ने की बात नहीं, वो हमने पढ़ लिया, हाँ तो जी हमें तो सब पता है। भाई सब पता है इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं वी डोंट नीड अ गाइड, जबकि अल्लाह ताला ने इसको गाइड बनाया है। वी हैव टू फॉलो द कुरान, ये गाइड है, इसके पीछे पीछे हमने चलना है, तब ये हमें लीड करेगा, किधर लेकर जाएगा, जन्नत तक। लेकिन बाज लोग अपने आप को इतनी अकलमंद समझते हैं, ये उनको लगता है शायद कि ये अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला ने ऐसे ही उतार दिया, हम तो सारे समझे समझाए बैठे थे, पैदाइशी हमें सब कुछ पता है, हम पैदा हुए ना तो हमें सब कुछ पता है, हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं है। यू वॉन्ट टू से दैट? ये इतनी एहतमाम हुआ इस कुरान को उतारने के लिए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार खुद उतरे हैं, 23 साल तक तकरीबन लेकर उतरते रहे, तो हमारे जैसे लोग आज इस सदी में पैदा होकर ये कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं इसकी। अल्लाह ताला ने फिर क्यों नाजिल किया? अगर हम पहले से ही समझे समझाए थे, पढ़े पढ़ाए थे, हमें सब अकलें पहले से थी, क्या जरूरत थी फिर इसकी? आप ये कहना चाहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, तो ये सारी फिर सारी बेकार एक्सरसाइज थी, नऊजुबिल्ला। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम का उतरना, ये सब उनको जरूरत थी, हमें क्या जरूरत है? उनके पास तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, उनके तो सामने थे अल्लाह के रसूल। अल्लाह ने कुरान उतारा इंसानियत के लिए, कयामत तक के लिए, सिर्फ उन सहाबा के लिए नहीं, इसीलिए तो इसको सेव किया गया है ना। अगर इसकी जरूरत बाद वाले लोगों को ना होती तो फिर इसको सेव करने की क्या जरूरत थी? इसको क्यों सेव किया गया? कयामत तक के लिए इसके कोई भी लफ्ज को भी कोई चेंज नहीं कर सकेगा, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ली। इट मींस कि अल्लाह ताला चाहते हैं ना कि आप तक एज इट इज अल्लाह ताला का कलाम पहुंच जाए, इसलिए इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले लिया। लेकिन आज लोग खड़े होके कितने आराम से कह देते हमें जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, हमें सब पता है। इतनी ये नहीं, तुम कहना चाहते हो ये इतनी फालतू चीज है, नाउसो बिल्ला, क्या बोल रहे हो? यानी हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही अल्लाह ने उतार दिया, वो लोग पढ़े जिन्होंने, जो पुराने जमाने के होते थे, हम 21st सेंचुरी के लोग सब कुछ जानते, आज साइंस का दौर है, आज गूगल से पूछेंगे हमने क्या करना है, आज गाइड गूगल को बना लिया, कुरान की जरूरत नहीं रह गई क्या जिंदगी में? सोचें इस बात को कि हम क्या कह रहे होते हैं जब हम इसको रहनुमा नहीं बनाते। वह बुशरा लिल मुस्लिमीन, और बशारत है, खुशखबरी है किसके लिए? लोग कहते हैं खुशखबरियां नहीं देते, डराते रहते हैं डराते रहते हैं, भाई खुशखबरी मुस्लिम के लिए है, सिर्फ मुस्लिम के लिए। मुस्लिम कौन है? असलामा युस्लिमु, इस्लाम जो मुती हो जाए, जो खुद को सरेंडर कर दे, जो इताहत कबूल कर ले, जो फरमा बरदार हो, उसके लिए खुशखबरियां हैं, ना फरमानों के लिए नहीं है। हम कहते हैं हम करते जो जो मर्जी रहे, हम मनमानियां अपनी करें, हम अपनी मर्जी पे चलें, हमने फरमा बरदारी नहीं करनी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, ये करना है हमने। लेकिन खुशखबरियां हमें आप सुनाते रहो, किस बात की खुशखबरी भाई? खुशखबरी किसके लिए है? सबके लिए नहीं है, लिल मुस्लिमीन है, मुस्लिम के लिए। क्या हम मुस्लिम हैं? मैं वो वाला मुस्लिम नहीं कह रही कि आपको रिलीजन पूछा जाए, आपको ये पूछा जाए आप कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं, या आपको ये पूछा जाए आप कौन होते हैं, रिलीजियसली तो आपका मुस्लिम, वो वाला मुस्लिम नहीं, इसका मीनिंग देखें, व्हाट डस मुस्लिम मीन रियली, क्या हम मुस्लिम हैं? वो पता है, ऐसी ऊंटनी जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में हो, उसको ये कहा जाता था। समझ आई? आप इमेजिन करें एक ऊंटनी जिसकी नुकेल उसके अपने हाथ में नहीं, वो फ्री नहीं है, उसके मालिक के हाथ में। मालिक जिधर चाहे खड़ा कर दे, जिधर चाहे चलाए, जब करे तेज कर दे, आहिस्ता करे, बिठाए, कुछ करे, उसकी नुकेल कंट्रोल उसका किसके हाथ में है? उसका कंट्रोल उसके मालिक के हाथ में है। क्या मेरा और आपका कंट्रोल हमने अपने मालिक के हाथ में दिया है कि जैसे चाहे हमें, जब कहे उठ जाओ उठ गए, बैठ जाओ बैठ गए, पर्दा करो पर्दा कर लिया, खाओ खाया, नहीं खाओ नहीं खाया, ये खाओ और ये ना खाओ, ये सब हम ऐसे ही फॉलो करते? हम मुस्लिम हैं, हमने इताअत कबूल की है, या हम फ्री समझते हैं अपने आप को? आई एम फ्री, मुझे कोई डिक्टेट नहीं करा सकता, आई डोंट केयर अल्लाह का हुक्म क्या है, नाउज़ बिल्ला, मैंने तो वही करना है जो मुझे दिल करता है। ये वाली जिंदगी है या फर्मा बरदारी वाली जिंदगी? अगर फर्मा बरदारी वाली जिंदगी है तो बुशरा है, वरना कोई बुशरा नहीं है, वरना कोई खुशखबरी नहीं है। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, नालम अन्नम यकुलूना, और अब एक और इल्जाम जो उनका था, और अलबत्ता तहकीक, हम जानते हैं कि बेशक वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्नमा यालमुहु बशर, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, अल्लामा युअल्लिमु तालीम क्या होता है, ये जब अल्लामा लाम के मुशद्दत के साथ क्या जब आता है ये लफ्ज, तो क्या मतलब होता है, सिखाना, तालीम सिखाना होता है ना, यो अल्ली मुहू सिखाता है इसको एक इंसान। पहले कहते थे खुद ही घड़ के ले आता है, एक बात भी तो नहीं थी ना, कितनी बातें थी, देखो इसको तो कोई इंसान सिखाता है, अब कौन इंसान सिखाता है, ये बोहतान की भी इंतहा हो गई। कभी कहते कि एक अजमी गुलाम है, सफा पहाड़ी के पास वो ना कुछ चीजें बेचता था, तो आप सल्लम कभी कभी उसके पास बैठ जाया करते थे, कुछ बातें कर लिया करते थे, जैसे होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह लोगों को तालीम देते थे, तबलीग करते थे, दावत का काम करते थे, तो इससे भी बात करते थे। अब ये आदमी सही अरबी भी नहीं बोल सकता था, टूटी फूटी बोलता था, जाहिर अजमी था, उसके ऊपर कह दिया कि ये जी इससे सीख के आते हैं। इसी तरह बाज ने कहा कि एक नसरानी गुलाम है जिसका नाम जबर था, तो वो किसी आदमी का गुलाम था, वो भी मरवा के पास बैठा करता था, उस पर जो है ना मुशरिकीन ने ये एक अफवाह उड़ा दी कि जी ये कुरान ना वहां से सीख के आते हैं, तो ये आके फिर लोगों को सिखाते हैं, और लोगों को कहते हैं अल्लाह की तरफ से उतरा, अल्लाह उससे सीखा। इसी तरह एक मक्का में एक लोहार था, वो भी अजमी था, तो उसके पास आना जाना होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये देख के इन्होंने ये मशहूर कर दिया कि जी ये आदमी है, ये इनको सिखाता। इतने झूठ, इतने झूठ, और जब किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगता है ना, हम तो कितने परेशान हो जाते हैं कि इसने झूठ मेरे ऊपर लगा दी, कितने हम दुखी होते हैं। खुद सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम, उनके कोई सर पैर ही नहीं, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया उनके इस इल्जाम का कि लिसानुल्लज़ी युल्हिदूना इलैहि आजमी, कि उसकी जुबान जिसकी तरफ ये निस्बत करते हैं, जिसकी तरफ ये इशारा करते हैं, उसकी जुबान तो अजमी है, वहाजा लिसानुन अरबी मुबीन, और ये कुरान तो अरबी जुबान में है, साफ अरबी में है, ये किधर के बातें बना रहे हैं? उस बंदा जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, यानी वो जो गुलाम है या जो लोहार था, ये जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, वो अजमी है, उसको तो खुद बोलनी भी नहीं आती अरबी सही। और ये तो वो कुरान है कि जब सूरह कौसर नाजिल हुई थी, हजरत अली ने उसको लेके जाके ना काबा में लटका दिया था लिख के, और काबा में उस वक्त बड़े बड़े शायरों और उनके बड़े बड़े लोगों के कलाम सिर्फ लटकाए जाते थे, तो उस वक्त वहां के बड़े शायर ने लिख दिया कि मा हाजा कलाम अल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये गेव अप, कि मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकता, इसके ऊपर मैं कोई बात ही नहीं कर सकता, ये तो इंसान, देखिए हमें इसलिए कि हमें ये जुबान नहीं ना आती, तो हमें इतनी उसकी फसाद बलागत, उसकी जो इसकी हाइट है ना, उस तक हम पहुंच नहीं पाते। वो लोग समझते थे, तो उन्होंने इसीलिए तो गिव अप कर रहे थे। कितनी दफा तो कुरान ने चैलेंज किए, अच्छा अगर अगर ये खुद बना के लेते हैं तुम भी बना के ले आओ। वो तो उम्मीद है, तो वो बना के ले आओ, तुम तो अपने आप को कहते हो तुम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो, तुम बना के ले आओ। आज भी देखें, ये गैर मुस्लिम कहते हैं कि ये कलाम जो है ना, ये मोहम्मद का कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते हैं। यानी खुद ही इन्होंने बना लिया, खुद ही ये ले आए। तो भाई अगर वो ले आए तुम भी ले आओ, इंसान का कलाम है ना तुम भी ले आओ। बल्कि कुरान तो ये चैलेंज करता है कि तुम अकेले का जरूरत है, तुम सारी मखलूक को मिला लो अपने साथ, मैं अंदूनिल्ला अल्लाह के सिवा सब फरिश्तों जिन्नों सबको मिला लो तुम भी ले आओ। इसी से पता चलता है, दिस इज अ प्रूफ। अगर वो वाकई ही इस कुरान का मुकाबला कर सकते होते, ये इंसान का कलाम होता ना, तो उन्होंने छोड़ना तो नहीं था। वो तो इतने मुखालिफ इतने दुश्मन थे, वो उन्होंने जरूर कुछ ले आना था, लेकिन वो नहीं ला सके। और मैंने आपको कई दफा बताया कि मुसैलमा कज़ाब ने जब कहा, झूठी नबूवत का दावा किया, तो उसने ये कहा मेरे ऊपर भी अल्लाह का कलाम उतरता है। जो वो लेकर आया उसके अपने कबीले वालों ने कहा खुदा का वास्ता ये किसी और के सामने ना कह दे, हमारी भी बेइज्जती कराएगा, ये अपने पास ही रख। लोग जानते थे ना, अहले जुबान थे, उनको पता था कि ये कलाम कुरान का मुकाबला हम नहीं कर सकते, और ये दलील है इस बात की, ये अल्लाह की तरफ से है। तो इसका हर लफ्ज अल्लाह, एक आयत भी कहा बना लो, एक सूरत बना लो, एक आयत बना लो, कुछ तो बना के लाओ, तो वो सीख के आते हैं, तुम भी सीखाओ उनसे। उनको तो अरबी भी बोलनी नहीं आती, तुम कहते उनसे सीख के आके बना लेते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उम्मी थे, खुद कैसे बना सकते थे? 40 साल तक की जिंदगी में तो कभी नहीं ऐसा कलाम किया। और आप इवन आप जब कुरान नाजिल भी हो रहा था, इवन आप देखें हदीस और कुरान में बड़ा फर्क है। अभी आप हदीस अरबी में पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि इसमें और कुरान में फर्क है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बना सकते थे, ये अल्लाह की तरफ से उतरा है, और अल्लाह ताला ने बड़े तमाम से इसको उतारा। 23 साल तक ही उतरता रहा, जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार इसको लेकर उतरे। जो छोटी बात है ये, हमने तो आज इसको वो कदर ही नहीं थी जो हमें इसकी कदर करनी चाहिए थी, इसको वैल्यू नहीं थी, इसको कुछ समझा नहीं है। कौन सा और ऐसा कलाम है जो आसमानों से उतर आया और जिसको लेकर फरिश्ते उतरे, और फरिश्तों का सरदार लेकर उतरे, और इतने साल तक उतरता रहे, और जो रब्बे कायनात का कलाम कोई कहे? कोई ऐसा इल्म नहीं। आप साइंस पढ़ते, आप मैथ पढ़ते, आप कुछ कितनी फील्ड्स को पढ़ते हैं, कौन सा मजमून ऐसा है जिसके लिए ऐसे आसमानों से उतारा जाए और ऐसे उसके लिए तमाम किया जाए, फिर भी इसको लीस्ट वैल्यू हम देते हैं बाकी उलूम के मुकाबले में। बाकी इल्म के लिए 16-16 साल पढ़ते हैं, एक बच्चा नर्सरी ग्रेड के अंदर आप डालते हैं, वो जवान हो जाता है, वो 25-26 साल का हो जाता है, तब तक भी पढ़ता रहता है। कहां 5 साल 3-4 साल की उम्र से बल्कि शुरू किया उसने, कोई नहीं कहता कि हाय इतना वक्त देना पड़ेगा, हाय हमसे कमिटमेंट नहीं होती। बच्चों को कमिटमेंट के साथ ही आप स्कूल भेजते हैं ना, फॉलो करते हैं ना सब रूल्स। क्या बात है कि कुरान के मामले में सबसे ज्यादा हमारा रवैया केयरलेसनेस का है, बिल्कुल लापरवाही का, बिल्कुल जैसे कि हमें इसको कोई वैल्यू नहीं है इसकी। क्यों? जबकि हम कहते हैं हमारा ईमान है इसके ऊपर। अगर हम ईमान रखने वालों का ये हाल है, तो जो ईमान ही नहीं रखते उनको क्या शिकायत करें? जो इस अल्लाह की आयत इस कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाते, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देगा। वाला हम आदाब नदी, मैंने आपको क्या बताया, अभी हिदायत की बात बताई ना, ये गाइड है। जो इसके ऊपर इसको मानता ही नहीं, उसको गाइडेंस कहां से मिलेगी? और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी जो अल्लाह की आयत पर ईमान नहीं रखते, जो इन एतराजात की बुनियाद पर अगर देखें पीछे आयात के साथ जोड़ के, तो जो एतराज कर रहे हैं वो जाहिर है जो मानते ही नहीं अल्लाह की तरफ से है, तो उनको हिदायत कैसे मिलेगी? कुरान के हक में से पहला हक है कि इसके ऊपर ईमान रखा जाए, मानो कि ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिल में। दूसरा हक क्या है, इसको पढ़ो, इसकी तिलावत करो। बाज लोग यहीं तक रुक जाते हैं, बच्चे को पढ़ा लिया, नाजरा पढ़ा लिया, कारी साहब ने बचपन में पढ़ा दी था, उसके बाद उससे आगे तो जाना ही नहीं। हालांकि इससे तीसरा हक है कि इसको समझा जाए। कितने लोग इसको जरूरी समझते हैं, कितने लोग हैं जो आज इसको ये हक दे रहे हैं। चौथा हक इसका ये, इस पे अमल किया जाए। पांचवा हक इसको ये कि इसको आगे पहुंचाया जाए। तो इसकी कौन जरूरत महसूस कर रहा है? बहुत हम कह देते हैं तो हम कहते हैं हाँ हमारा इस पे ईमान, बस, और उसके बाद नाजरा पढ़ लिया, दैट्स इट। इसके बाद हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानते इसको। और पता नहीं ईमान किस किस्म का है कि जब पता ही नहीं इसमें है क्या, तो ईमान किस पे रख रहे हैं? ईमान तो है ना मान जाना कि जो इसमें है वो सही है बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से, जबकि यही नहीं पता कि इसमें है क्या, किस चीज पे ईमान रख रहे हैं। तो अगर किसी को कभी भी ये डाउट हो कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, पता नहीं सच है कि नहीं, इसका मतलब ईमान नहीं है। पता नहीं अल्लाह की तरफ से है या नहीं, तो इसका मतलब ईमान नहीं है। और यहाँ पे देख लें, ला यहदीहिमुल्लाह, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता जो उसके ऊपर ईमान नहीं रखते। यानी इसका मतलब है कि हिदायत का सोर्स क्या है? कुरान। और कुरान को जो नहीं मानेगा वो हिदायत भी नहीं पाएगा। हिदायत यहां से मिलनी है, गाइडेंस इधर से मिलेगी। तो जो लोग सोचते हैं कि हमें तो गाइडेंस पहले ही मिली हुई है, कैसी गाइडेंस अगर वो कुरान के ऊपर ही नहीं ईमान रखते, अगर वो कुरान को ही नहीं मानते। ऐसे तो हम सब सोचते हैं या हम सब कहते हैं कि हमारा ईमान है कुरान के ऊपर, हम मानते हैं इसको अल्लाह का कलाम कहते हैं ना। तो ये हमारा कैसा ईमान है कि हम इसको मानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और ये कामयाबी का रास्ता दिखाता है, ये हिदायत है और ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ हुआ है, फिर भी हमारे नजदीक इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर वाकई ईमान होता तो हमारा क्या ये सलूक होता इसके साथ? अगर हमारा ईमान होता तो हम तो इसको कभी छोड़ते ही नहीं, इसको पढ़ते, इसको सीखते, इसको समझते। ये तो हमारी गाइड है, ये तो हमारे लिए फलाह का रास्ता बताने वाला है, ये तो हमें कामयाबी तक पहुंचाने वाला है, ये तो हमारी अल्टीमेट वो लाइफ जो एंडलेस लाइफ है, एंडलेस लाइफ है, उसकी लग्जरीज, उसकी सेफ्टी, उसकी में जन्नत की जमानत देने वाला है, ये तो हमें वो राह दिखाने वाला है। हम कैसे इसको छोड़ सकते थे? कैसे कह सकते थे कि हमें इसकी जरूरत नहीं? कैसे हम कह सकते थे इसको सीखना फर्ज है? कई लोगों का तो यही क्वेश्चन रहता है, फर्ज है क्या? चलो नहीं है फर्ज, ठीक है नहीं फर्ज, तो तुम रास्ता कैसे देखोगे जन्नत का? कैसे वो रास्ता पाओगे? कौन तुम्हें दिखाएगा? अल्लाह ताला तो फरमाया ला यहदीहिमुल्लाह, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता, उनको गाइडेंस मिलती ही नहीं है। जाहिर है जो इसकी तरफ आएगा नहीं, जो मानेगा ही नहीं इसको, उसको गाइडेंस कैसे मिलेगी? ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, वो रब जो समी है, बसीर है, खबीर है, आलीम है, उसका कलाम है। उसने हिदायत लेने के लिए इसको नाजिल किया है। सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ये कुरान ऐसा है कि जिनके दिलों में अल्लाह ताला की खशियत होती है उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इससे, फिर वो अल्लाह की याद की तरफ झुक जाते हैं। देखिए आप, एक दुनिया का वजीर, अफसर, कोई बादशाह आपसे बात कर रहा हो तो इंसान भूले नहीं समाता। किसी ने मुझे कहा कि जी मुझे, आपको पता है मुझे तो वो एमडीज की मीटिंग में बुलाया गया और वो एमडी ने मेरा नाम लेके मुझसे बात की थी, इस पे वो इतनी खुश थी कि मेरे एमडी ने मुझसे बात की, पूरी मीटिंग में मेरा नाम लिया उसने। कितनी बड़ी एक बात थी ना, उसको अपनी वैल्यू लग रही कि मेरे से बात की। अल्लाह अकबर, ये सही बात आपको बता रही है, मैं ऐसे ही बोल रही। आप अपने हस्बैंड वगैरह से पूछ सकते हैं, अपने बेटे से पूछ सकते हैं, कोई भी जो जॉब करता है उसे पूछ लें कि आपकी कंपनी के एमडी अगर आपको मीटिंग में बुला के आपसे बात करें, सबके सामने आपसे बात की जा रही है, आपका नाम लेके, तो आपको कैसा लगेगा? अब देखना फिर उनकी खुशी की इंतहा, इतना ही उनके लिए बड़ा काफी हो जाएगा। और रब्बे कायनात मालिक और खालिक मुझसे और आपसे बात करें और हमें परवाह ही ना हो, हमें को फर्क ही ना पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इससे ही अंदाजा करें कि हमने क्या अहमियत दी है उसके कलाम को। दुख होता है और तो कुछ नहीं। इस इन बातों को कोई समझना ही नहीं चाहता, कोई सोचना ही नहीं चाहता। अगर हम ये कहते हैं ना कि ये कुरान है, ये तो बड़ी हिदायत की किताब है, ये तो हमारे मसाइल का हल है, ये तो ये है, लेकिन आना हमने इसकी तरफ नहीं, अल्लाह जाने फिर क्यों ये बातें कर रहे हैं। वाकई अगर यकीन है इस बात का तो फिर तो हमें भागना चाहिए। अगर इसमें वाकई दिल का सुकून कहते हैं, अगर वाकई कहते हैं ये सच्ची किताब है और ये हिदायत का रास्ता है, तो फिर तो भागना चाहिए इसकी तरफ। वरना तो इसका मतलब है कि आपकी सिर्फ जुबान से बात है, अगर इसके बावजूद ही, कहने के बावजूद इसकी तरफ नहीं आते, तो दिल में यकीन नहीं है। ऊपर ऊपर की मुंह की बातें हैं, तो मुंह की बातें तो मुनाफिकीन भी बहुत प्यारी कर लेते थे, बड़ी खूबसूरत बातें करते थे। अल्लाह ताला ने इस बात पे उनकी बख्शिश नहीं कर दी कि उन बातें बड़ी अच्छी करते हो भाई, क्या बात है तुम्हारी। उनकी बातों की तारीफ की गई कुरान में कि इनसी बातें सुन लो कि बातें कितनी खूबसूरत करते हैं। उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह की बातें ही रह जाए। अल्लाह अकबर। इन्नमा यफ्तरिल कदिब अल्लदीन ला युमिनून। बेशक घड़ लेते हैं झूठ को, वही लोग झूठ को घड़ते हैं जो ईमान नहीं रखते अल्लाह की आयात पर। ये झूठ, ये बातें कि इसने खुद ही बना लिया है, इसको तो कोई सिखाता है, ये इस तरह की बातें सिर्फ वो ही कर सकते हैं। ऐसे झूठ सिर्फ वो ही बोल सकते हैं जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं रखते। उनका ईमान नहीं इसलिए झूठ बोलते। अब देखिए ना, एक आदमी ने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये क्या मोमिन जिना कर सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर एक जगह पे बुखल का भी आया, और क्या मोमिन चोरी कर सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। पूछा क्या झूठ बोल सकता है? फरमाया नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि झूठ अल्लाह के ऊपर सिर्फ वही बोलता है जो उसकी आयात पर ईमान नहीं रखता। और आज देखें झूठ इतना ज्यादा, भी सोच नहीं सकती कि ऐसी ऐसी वीडियोस बनाना किसकी क्या जरूरत है। देखो आप, हैरत होती है इन लोगों को के ऊपर कि ये कौन सा आप दीन की खिदमत कर रहे हैं कि जो झूठी वीडियोस। एक बच्ची खड़ी भी है और उसको वो पता नहीं कोई गा रही है या क्या कर रही है, उसको ऊपर कुरान लगा दिया कि ये कुरान पढ़ रही है, और उसके बाद बड़े बड़े फिल्मी वो एक्टर्स और वो सारे दिखाए कि वो बड़े मैस्मराइज हो गए और उनके दिल पे उतर गया वो कलाम और वो इतने मुतासिर हुए। क्यों मजाक उड़ाते हो अपने दीन का? कहीं काबा के अंदर से देखो कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, तिलावत की आवाज आ रही काबा के अंदर से, जबकि अंदर कोई है ही नहीं। अब ये वीडियो इतनी वायरल, किसने इतना झूठ बनाया, इतना झूठ। फिर कहीं इसकी कहीं तस्वीरें लगा देते हैं, ऊपर आवाज किसी और की लगा देते हैं, झूठ, सब कुछ झूठ। ये कौन सी दीन की तबलीग है? और बाद में पता चलता है ये तो फोटोशॉप थी, ये तो ऐसे ही फेक वीडियो है। क्या इमेज रह जाता है मुसलमानों का, और इसमें क्या दीन की खिदमत है? जब ये पता चलता है कि ये झूठ था, तो उल्टा बेइज्जती होती है, उल्टा बदनामी का बायस बनता है कि कितने झूठे लोग हैं, कभी भी आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। हमें प्रूव करने के लिए, अपने दीन को प्रूव करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है कि देखो वो एक बच्ची बोल रही है, अब वो अल्लाह जाने गाना गा रही है, कौन सा शो है, कौन सा क्या है। इंसान सोचता है ये देखो, अगर वो इतने ही मुतासिर हुए होते तो वो इस्लाम ना ले आते। झूठी वीडियोस इतनी आजकल वायरल होती हैं, कहीं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, कहीं आप व्हाट्सएप पर दिखे आ रही हैं। ये झूठ क्या फरमाया? झूठ वो ही घड़ते हैं जिनका अल्लाह की आयात पे ईमान नहीं होता। वह उलाए का हुमुल कैदिबून, यही लोग हैं जो झूठे लोग हैं। और अल्लाह पे झूठ बांधना, उसके दीन के ऊपर झूठ बांधना सबसे बड़ा झूठ है। जो लोग इस चीज से भी नहीं चूकते, और फिर देखे किसी की सेइंग होती है, किसी उसको हदीस बना के पेश कर देते, ये हदीस है जी, हालांकि वो हदीस होती ही नहीं है। कितना झूठ है आज मुसलमानों के अंदर, और अपनी तरफ से वो सोच रहे होते हैं कि हम कितना मुतासिर कर रहे हैं लोगों को, देखो हमने कैसा एक बड़ी बात बना दी, कहीं अल्लाह लिखा दिखा देते हैं, इस तरह फोटोशॉप सारी चीजें, कहीं दिखा देते हैं चांद इतना बड़ा निकल रहा है कहीं से, कहीं ऐसे निकल दिखा देते हैं, देखो जी उसके ऊपर तिलावत लगा देते हैं, देखो ये पूरा हो गई, ये बात पूरी हो गई, अल्लाह अकबर। हर ऐसी चीजों को, इस झूठ को आगे भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि हमारा झूठ में हिस्सा ना पड़े। मन कफर बिल्लाही मिन बादी ईमानी, जो कुफर करे अल्लाह का, किसके बाद? ईमान लाने के बाद। अब ईमान लाने के बाद काफिर होने के दो माने हैं, एक माना तो ये है कि दिल में तो उसको पता है कि ये रसूल सच्चे हैं, मगर जुबान से इकरार नहीं करता। जैसे यहूदी जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, मगर वो जुबान से नहीं मानते थे, इसी तरह मुशरिकीन में भी बास अच्छी तरह जानते थे कि ये सच्चे नबी हैं, मगर बस बोलेंगे तो फिर हमारी चौधराहट और सरदारी का क्या होगा। तो चाहे दिल में कोई समझता रहे कि कुरान सच्चा, नबी सच्चे, जब तक जुबान से इकरार नहीं करता एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी कुफर करना है ईमान के बाद, दिल के अंदर ईमान यानी दिल में माना हुआ, दिल में समझ है लेकिन नहीं मान रहे। और दूसरा जिसका खास तौर पे यहाँ पे बात हो रही है, वो है ईमान लाने के बाद कुफर का कलमा जुबान से निकाल देना, यानी मुसलमान है लेकिन कुफर का कलमा जुबान से निकाल दे तो वो मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया। और उलमा ने इनके बारे में बताया भी है कि कौन सी बातें कहने से इंसान मुर्तद हो जाता है। आज तो कोई को पता ही नहीं चलता ना, लोग ऐसी ही बातें कह देते हैं, ऐसी बड़ी बातें कह देते हैं कि वो इस्लाम के दायरे से निकल जाते हैं और उनको नहीं पता होता। बहुत एहतियात करनी चाहिए अपनी जुबान खोलने से पहले, अल्लाह रसूल के बारे में, दीन के बारे में, मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं नहीं मानता उसको, मैं नहीं अल्लाह के इस हुक्म को मानता, एक हुक्म का भी इनकार कर देना इंसान को सारे कुरान के इनकार के बराबर है, एक का भी इनकार। अब मुर्तद होने के वाले के बारे में, यानी जो पहले मुसलमान था, ईमान का दावा करता था, उसके बाद उसने जुबान से कोई ऐसी बात निकाल दी, वो मुर्तद हो गया, तो उसकी सजा क्या है? अच्छा, एक एक्सेप्शन इसमें दी गई है, आपके भी शायद जहन में आ रही हो कि बाज दफा ऐसे होता है कि अल्लाह माफ करे, कोई लोगों के ऊपर इतना टॉर्चर होता है, या ऐसी उनको कोई मजबूरी की हालत आ जाती है, तो उनका क्या है? उनका एक्सेप्शनल केस है, इसलिए उनका कहा गया इल्ला मन उक्रिया व कल्बू मुतमाइन बिल ईमान, सिवाय उसके। एक बंदा तो है को ईमान के बाद उसने कुफर किया, जुबान से कलमा कुफर निकाल दिया, सिवाय उसके जो मजबूर कर दिया गया लेकिन उसके दिल में ईमान है। यार ये आयत खास तौर पे अम्मार बिन यासिर के बारे में नाजिल हुई, उनके ऊपर इतना टॉर्चर उनको किया गया, उनको ये ही नहीं पता चलता था मैं अपने मुंह से क्या बात निकाल रहा हूँ, तो उन्होंने उनकी बात मान के वो कलमा कुफर कह दिया, उसके बाद इतने परेशान हुए मेरे से ये क्या बात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने दिल को कैसा पाते, फरमाया दिल तो मेरा ईमान के पर मुतमईन है, तो बस ठीक है फिर। लेकिन देखे ना, बास चीजें ऐसी होती हैं कि इतना, जैसे आज भी दुनिया में अल्लाह ताला उन मुसलमानों के ऊपर रहम फरमाते हैं, अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमाते हैं, अल्लाह उनको निजात दे ऐसे जालिमों से जिन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बंद किया, पर इतना जुल्म है यकीन करें मैं कभी पढ़ भी लू ना तो मैं सो नहीं सकती, इतना ज्यादा इंसान के आंसू निकल आते हैं सिर्फ पढ़ने से, अभी देखा नहीं है और अभी वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जैसे उनको ईमान से हटाने के साथ के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जैसे उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, जैसे उनको वहां पे बंद किया गया है, और कोई कसूर नहीं, सिर्फ एक किसी को नमाज पढ़ते देख लिया, किसी को मस्जिद जाते देख लिया, किसी को सलाम करते देख लिया, कहते हैं इसको सफाया कर देंगे हम इनके दिलों से इस्लाम का, जब तक सफाया ना हो जाए उस वक्त तक उनकी अपनी तरफ से वो उनको मतलब एजुकेट कर रहे हैं। वो कहते हैं हम एजुकेट कर रहे हैं, ये एजुकेशन क्या है कि इस्लाम का सफाया कर दो। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को से अल्लाह ही बतला ले कि जो इस्लाम को उनके जहनों से उनकी जिंदगियों से मिटाने के लिए उनको ऐसा मजबूर कर दें कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन ऐसे लोग अगर मजबूर हो के उनकी बात मान लेती हैं तो वो इल्जाम उनके ऊपर कुछ नहीं है, वो इस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केसेस है। यहाँ पे किन की बात हो रही है जो कुफर के बाद अपनी मर्जी से, यानी आगे बात आ रही, वलाकिन मन शरह बिलकुफरी सदरन, जिसका सीना कुफर के लिए खुल गया, मुतमईन है कुफर के ऊपर, वो खुश है कि मैं ये इनकार करता हूँ और मुझे नहीं इसकी परवाह और मुझे नहीं है और मैं तो कुरान को, और ये अल्लाह माफ करे कि ये जो है ना इसके अंदर तो कहानी है, किसी के मुंह से ये बात भी निकली भी सुनी, ये जी कहानी है, ये तो ऐसे ही पुराने लोगों की कहानी है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं, ऐसी बातें हैं, या ये तो बाद में बनाई गई, या ये तो कयामत कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होना, बस दुनिया के अंदर ये इनकार कर दिया, मुर्तद हो गया, अल्लाह का इनकार कर दिया, रसूल का इनकार कर दिया। तो ऐसा इंसान अगर उसका शरा सदर इसके ऊपर हुआ है, मुतमईन है इस पे, फअलैहिम गज़बुम मिन अल्लाह, तो उनके ऊपर अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा, और इंसान को अल्लाह ताला की रहमत की जरूरत है हमेशा, उसका गजब इंसान नहीं सह सकता, अल्लाह का गजब, उसका गुस्सा, जिसके कुन कहने से उसकी जिंदगी तलपट हो जाती है इंसान की, एक उसका कुन कहना है और इंसान की हस्ती सा मिट सकती है, उसके गुस्से को उसके गजब को कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा इंसान अल्लाह के गजब में आ गया। वलहुम आदाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब, जिस अजाब को, अजाब का वर्ड ही, टॉर्चर का वर्ड ही इनाफ है, लेकिन जब कह दिया बड़ा अजाब, अल्लाह के यहाँ बड़ा अजाब कैसा होगा, अल्लाह ताला माफ करे, और अल्लाह ताला इससे हमें और हमारी नस्लों को भी महफूज रखे, नस्लों को भी महफूज रखे, कि कोई ईमान के बाद कुफर में चला जाए और वो उसके ऊपर मुतमईन हो गया, उसके लिए ये सजा है। दुनिया में तो मुर्तद की सजा कत्ल है, कि वो काबिले कत्ल है जो मुर्तद हो जाए, और आखरत में अल्लाह का गुस्सा, दर्दनाक, बड़ा अजाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी शिर्क ना करना, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए, चाहे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, चाहे तुझे जला दिया जाए, कभी शिर्क ना करना। हाँ, मगर जैसे अब मैंने आपको बताया ना, ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने मजबूर हो गए, जैसे अमार बिन यासिर है, देखिए ना, अब कोई भी इंसान की एक लिमिट होती है ना, किसी को इतनी ज्यादा तकलीफ दे दी जाए, लेकिन अब इसके अंदर भी अजीमत का रास्ता भी है, अजीमत मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट, जो जो बेस्ट वाला है, बेस्ट वो ये है कि जैसे हजरत बिलाल थे, कितना उनको टॉर्चर किया गया, उन्होंने कहा नहीं, आहद आहद ही मुंह से निकलता था, मगर हर एक इंसान, अल्लाह को पता है सब इंसानों की एक जितनी ताकत नहीं है, कोई हो जाएंगे जो गिर पड़ेंगे, कोई हो जाएंगे जो टूट जाएंगे, तो उस वक्त जब इतनी मजबूरी की हालत होती है ना, जैसे कि आप देखें हराम भी उस वक्त अलाउड हो जाता है जब इंसान की जान निकलने वाले का खतरा हो, तो उस वक्त उतना सा हराम बस जितना कि इंसान की जान बचाने के लिए, और वो भी कराहत होनी चाहिए इसमें, तो खुशी से नहीं खाना शुरू कर देना कि चलो चलो अच्छा हो गया, मौका मिल गया, वैसे तो मुझे शराब अलाउड नहीं थी, आज तो शराब पी के देखता हूँ, क्योंकि जाहिर है आप तो मेरे लिए जायज हो गई है, तो मजा करते हैं आप, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर भी इंसान के दिल में कराहत हो, ये अल्लाह मैं मजबूरी के अंदर ये कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर कलमा कुफर कहना पड़ गया उसको, तो तब भी दिल में कराहत होनी चाहिए, तब भी दिल दिल में ईमान होना चाहिए। अब देखें यहां पे, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जब हम कहते हैं ना कोई मजबूर कर दिया गया, वो कौन सी मजबूरी है? बाज लोग ऐसे ही किसी चीज को मजबूरी बना देते हैं, अब क्या करें जी, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारी तो मजबूरी है, अब हम तो इनके सामने, तो अब हम बोलेंगे किसी ने मुझे कहा कि उसके हस्बैंड जो हैं, जाहिर वो उस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के अंदर जहाँ पे मंदिर हैं, हर तरफ कुफर है, शिर्क है, तो वो कहने लगी कि उसका हस्बैंड ऐसा है कि वो जब मंदिर के सामने से गुजरता है तो खड़ा होके बाकायदा ताजीम के साथ उनके आगे हाथ बांधता है, फिर गुजरता है फिर आगे से। तो बाज लोग हो सकता है ऐसी जगहों पे, जो हम गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं, तो हम सोचें कि जी हम तो वो मजबूरी के तहत कर रहे हैं, क्या करें भी, हमें इनको तो खुश करना है ना। ये मजबूरी नहीं है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, ये कोई मजबूरी नहीं है, समझ आई बात। ऐसे ही नहीं हम कोई चीजों को मजबूरी बना सकते कि नहीं जी बस हमने इनके अंदर रहना है फिर हम, मतलब यानी ये हमारे से फिर खुश भी तो रहें क्योंकि फिर हमें वरना तो इनसे खतरा रहेगा। नहीं, मजबूरी ये है कि आपको अपनी जान इज्जत इसका जाने का खतरा हो गया, आपके ऐसे हालात आ गए हैं आपके ऊपर कि या तो आप कलमा कुफर बोल दें या फिर जान चली जाएगी या इज्जत चली जाएगी या ऐसी कोई चीज हो जाएगी, इतने आप मजबूर हो गए तब है। ऐसे नहीं कि भाई इनके अंदर रहते हैं तो अब हम क्या करें, इसको मजबूरियां ना कहें, इसको ये बहाने बना के उनकी खुश करने के लिए ये ना चीजें अपनाएं, ठीक है, फिर ईमानी जुर्रत कहाँ चली जाएगी। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं हम मजबूर हैं। कौन मजबूर कर रहा है आपको ये कहें कि उनकी खुशनुदी चाहिए अल्लाह की खुशनुदी छोड़ के। तो इंसान के अंदर ना कराहत होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए शिर्क से, कुफर से, काफिर से, मुशरिक से नहीं है, शिर्क से और कुफर से। उसके अंदर ईमानी गैरत होनी चाहिए। आपको कोई बुरा कहे तो आपको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ कोई शिर्क कर रहा है तो कोई बुराई ना लगे और इसको ठीक है जी कोई मसला नहीं है, हम क्या करें हमारी मजबूरी नहीं, ये मजबूरी नहीं होती फिर। ठीक है, बात उम्मीद है समझ आ गई होगी।